मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 फरवरी 2019 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से उसी विषय को आगे बढ़ाने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं जिस पर पिछले दो दिनों से मैं बात करता आ रहा हूं। और दरअसल सच पूछिए तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस विषय के प्रति आप लोगों ने बहुत अधिक उत्सुकता, बहुत अधिक प्यार अपना जताया है और इसके माध्यम से मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि सही मायने में जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं, हमारे व्यक्तित्व की अनिवार्यताएं हैं, उनमें आपकी इतनी अधिक रुचि है और आप समझते हैं कि कौन सी बात आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, तभी आप ऐसे विषय पर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अदरवाइज तो ठीक है यार, भाषा होती है और ठीक है, हम कर लेंगे, हमको क्या लेना देना है, हमने तो जो बोलना था बोल दिया, सामने वाला समझे न समझे वो उसका सिर दर्द है, हम उसकी परवाह क्यों करें। इस तरह की बातें भी दिमाग में आनी स्वाभाविक है और कुछ लोगों के दिमाग में आती भी है और हो सकता है कि मेरे प्रिय श्रोताओं में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आ रही हों, लेकिन वो स्वाभाविक है कि ऐसी बातों को एक्सप्रेस करके अपने को थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि बदनाम नहीं करना चाहते, नीचा नहीं दिखाना चाहते। लेकिन मित्रों, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जिनके दिमाग में ऐसी बातें आ भी रही हों उन्हें तो खासकर इन तीनों दिनों की बातों पर जो हम दो दिन से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। देखिए, जो चीजें हैं वो हैं, हमारे अपने मान लेने से, उसे अस्वीकार कर देने से बात बनती नहीं है। सूरज निकला हुआ है, मैं कहूं कि नहीं निकला हुआ है, मैं तो नहीं मानता, तो आप मत मानिए उससे, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को या दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा, जो फर्क पड़ना होगा वो आपको पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सत्य होते हैं, चाहे वो व्यक्ति के सत्य हो, चाहे वो समाज के सत्य हो, चाहे वो जीवन के सत्य हो, चाहे वो प्रकृति के सत्य हो, जिन्हें हमें पूरे खुले मन से, उदारता के साथ और तर्कपूर्ण तरीके से स्वीकार करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं भाषा और व्यक्तित्व पर आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सबने जरूर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी। मैं वो कहानी तो आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उसमें जो तथ्य है वो जरूर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। कहानी इससे संबंधित है मित्रों, कि एक साधु होते हैं, जंगल में बैठे होते हैं और वो अंधे भी होते हैं, एक पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं। फिर एक राजा जो है अपने दल बल के साथ में वहां शिकार करने के लिए जाते हैं। जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो जब राजा शिकारी बंदूक की गोली चलाते हैं या कह लीजिए तीर चलाते हैं, तो वो जो शिकार था, चलिए हम यहां मान लेते हैं कि एक हिरण रहा होगा या शेर रहा होगा, उसको तीर नहीं लगता और वो भाग जाता है। अब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि अरे वो शिकार तो भाग गया। तो इसके बाद राजा कहता है लोगों से कि देखो कि वो किधर गया है, वो शिकार जो है वो किधर भाग कर गया है। तो सबसे पहले एक सैनिक आता है और देखता है कि साधु यहां बैठा हुआ है, तो उससे पूछता है कि क्या तुमने शिकार को इधर जाते हुए देखा है। इसके बाद फिर मंत्री आता है, वह भी साधु से पूछता है कि क्या तुमने शिकार को इधर से जाते हुए देखा है। और इसके बाद राजा खुद आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने शिकार को जाते हुए देखा है। अब ये जो पूछते हैं के बाद जो मैंने वाक्यों का प्रयोग किया है, एक जैसा प्रयोग किया है। दरअसल होता यह है कि ये जो तीनों व्यक्ति साधु से पूछने आते हैं और वो साधु ब्लाइंड होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, अलग अलग भाषा में उनसे पूछते हैं। जैसे जो सैनिक आया वो कुछ इस तरह से पूछेगा कि अरे अंधे, क्या तुमने कहीं जाते हुए देखा है। मंत्री जब आएगा तो थोड़ा सा पूछेगा कि हे साधु, या आप यूं कह लीजिए कि हे अंधे व्यक्ति, क्या आपने देखा है जाते हुए। और राजा आ रहा है तो पूरी विनम्रता से कह रहा है कि हे विप्रवर, क्या आपने किसी शिकारी को इधर से गुजरते हुए देखा है। तो जब राजा अंत में आता है और उससे पूछता है बड़ी विनम्रता के साथ, क्या आपने गुजरते हुए देखा है, तो वह राजा से कहता है कि हे राजन, मैंने तो नहीं देखा। जब वो साधु यह कहता है कि हे राजन, मैंने तो नहीं देखा, तो राजा चौंक जाता है, किसने कैसे समझा कि मैं राजा हूं, क्योंकि ये तो आंखों से अंधा है, इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो पूछते हैं साधु से कि आप तो अंधे हैं, या यूं कह लीजिए कि आपको तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, फिर आपने ये कैसे जाना कि मैं राजा हूं? और वो साधु ये भी बताता है कि इससे पहले आपका सैनिक आया था, इससे पहले उसके बाद फिर आपका मंत्री भी आया था और यही पूछ रहा था। तो राजा यही पूछते हैं कि आपने कैसे समझा कि पहले जो आया था वो सैनिक था और इसके बाद जो आया वो मंत्री था, और अभी जब मैं आपके सामने खड़ा हूं आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं राजा हूं, आपने कैसे समझा? तो फिर वो उनके वाक्यों को दोहराते हुए वो बताते हैं कि उनकी भाषा के आधार पर मैंने अनुमान लगाया कि वह सैनिक होगा उसकी भाषा इस तरह की होगी, जो मंत्री होगा उसकी भाषा इस तरह की होगी, और आप चूंकि राजा हैं तो आपकी भाषा इस तरह की होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है मित्रों कि भाषा के आधार पर मैंने यह अनुमान लगा लिया, जो बिल्कुल सही अनुमान था, कि यह व्यक्ति कौन होगा। दोस्तों, क्या आपको इस पर यकीन है? सोचिए, क्या आपका इस पर यकीन है? और अगर यकीन नहीं है तो फिर इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। विचार इस रूप में कीजिए कि आपके साथ बहुत से लोग रहे हैं, बहुत से आपके परिचित हैं, उसमें से आपके कुछ मित्र हैं, कुछ आपके दुश्मन हैं, कुछ के प्रति आपके में उदासीनता का भाव है, कुछ के प्रति आप चिंता का भाव रखते हैं। अलग अलग तरह के लोग आपकी जिंदगी में आए हुए हैं, और अब थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। और प्लीज आप ऐसा कीजिए ही कि सोचने की कोशिश कीजिए कि जो आपको प्रिय लगते हैं वो क्यों प्रिय लगते हैं? क्या उनके प्रिय लगने में उनके बोलने का कोई योगदान है? जो लोग आपको अप्रिय लगते हैं, जिनसे आप चिढ़ते हैं, क्या आपके इस चिढ़ने में उनकी भाषा का कोई योगदान है? जिनकी आप कोई परवाह नहीं करते, तो क्या आप सिर्फ इसलिए परवाह नहीं करते कि उनकी भाषा ही कुछ ऐसी है? विचार कीजिए, और केवल भाषा के स्तर पर उनके चरित्र क्या हैं और वो आपका कितना नुकसान करते हैं, कितना हित साधते हैं, कितने आपके काम के, उसको भूल जाइए। है ना, क्योंकि एक व्यक्ति में से हमारे जो संबंध बनते हैं, उस संबंध बनने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन अभी आप केवल भाषा पर अपने आप को केंद्रित कीजिए, सिर्फ भाषा पर। मित्रों, एक महीने पहले की बात है, लगभग एक महीने पहले की बात है, मैं हैदराबाद जा रहा था। तो जब मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां से फिर मुझे टैक्सी लेनी थी, और टैक्सी जो थी वहां थोड़ा सा घूम घाम करके जाना पड़ता है। तो टैक्सी स्टैंड तक पहुंचने के दौरान मैंने लगभग लगभग 6-7 लोगों से तो बात की ही होगी, और बात कुछ नहीं, बस केवल टैक्सी स्टैंड किधर है ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो बड़ा घूम फिर करके ये है, फिर नीचे उतर करके, और इस तरह से वो जगह थी। मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वहां जितने लोगों से भी मैंने टैक्सी स्टैंड के बारे में पता पूछा, सभी ने इतनी विनम्रता के साथ सर सर कहके इतनी सधी हुई भाषा में बताया कि आज भी मुझे वह सब कुछ याद है, और मैं उनके उस व्यवहार को, उनके उस आचरण को, उनकी उस भाषा को आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उनके चेहरे याद नहीं है लेकिन उनकी भाषा याद है। तो मेरे जेहन में जो वो लोग अभी बस गए हैं, वो अपने चेहरे मोहरे के कारण नहीं बसे हुए हैं, अपने वो स्मार्टनेस के कारण नहीं बसे हुए हैं, वे अपनी भाषा के कारण बसे हुए हैं। और ये जितने भी लोग थे, ये उस एयरपोर्ट पर काम करने वाले ही लोग थे। और जब मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया, तो अब आप देखिए कि एक टैक्सी स्टैंड पर जो व्यक्ति था वो पर्ची काटता था। उसने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि सर देखिए, ये अगर आप यहां से पर्ची लेंगे तो आपको इतने पैसे यहां तक जाने के लिए लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपके पास समय है कि आप सस्ते में जाएं, तो देखिए सामने ही बस खड़ी हुई है, आप इस बस से भी जा सकते हैं। फर्क इतना ही होगा कि अगर आप उस बस से जाएंगे तो 101 रुपये आपको किराया लगेगा, लेकिन वक्त जो है ना आपको 1 से 1.25 घंटे लग जाएगा। और आप टैक्सी से जाएंगे तो आपको इतना लगेगा, लेकिन आप 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। जैसा भी आप चाहते हो आप बता दीजिए। मतलब वो अपनी तरफ से मुझे बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यह विचारों की स्पष्टता, कहने का अंदाज, और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, मतलब मेरे प्रति वो कितने ईमानदार हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति, तो आप सबने देखा ही होगा। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति, इसी कार्यक्रम को लेकर के शाहरुख खान साहब भी आए, सलमान खान भी आए, लेकिन वो इसे नहीं चला सके। कभी आपने विचार किया कि सलमान खान शाहरुख खान अपने आप में दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं और उन्हें देश का बहुत सम्मान प्यार भी मिला है और उनकी जो फिल्में आती थी वो सुपरहिट होती थी, आज भी सुपरहिट होती हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता है। लगभग उसी तरह की लोकप्रियता आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत कम अधिक होगा, जितने कि अमिताभ बच्चन अपने समय में लोकप्रिय रहे हैं। इसके बावजूद वो कौन बनेगा करोड़पति को उस तरीके से नहीं चला पाए जिस तरीके से अमिताभ बच्चन इसे चला पाए और चला पा रहे हैं। कभी आपने विचार किया कि इसके पीछे कारण क्या है, जबकि ये दोनों यंग हैं, अभी भी फिल्में बना रहे हैं, उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अगर हम फैन फॉलोइंग के मामले में देखें यंग जनरेशन में, तो शायद सलमान खान और शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से 20 बैठेंगे, 19 नहीं होंगे। इसके बावजूद वो क्यों नहीं वहां सफल हो पाए, क्या इसमें भाषा का कोई रोल है? मित्रों, इस पर सिर्फ विचार कीजिए। जरूरत हुई तो मैं इस विषय पर और भी आगे आपसे बात करूंगा। तो चूंकि अब वक्त हो चला है मित्रों, तो अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।